गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गहुराई सब संशय तुम रे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जाण्या। वेदों और पुराणों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, इन्हीं में उलझ पुलझ रह करके अपनी अटकल से ज्ञान गुण बना करके हम यही काल के जाल में फंसे रहे। भरम गए जग वेद पुराणा आदि राम का भेद न जाण्या। राम राम सब जगत बखाने आदि राम को कोई बिरलाए जाने। आदि राम माने परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष को। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम न पाई। कि जो सृष्टि रचना और ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में मैं ज्ञान देने जा रहा हूं, बुद्धिमान लोग तो इसको सहर स्वीकार करेंगे, मूर्ख वो नहीं सुना करते, वो तो लकीर के फकीर होते हैं। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताना चाहते हैं कि जो मैं बताने जा रहा हूं इस बात को, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। के ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ अष्टंगी दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन काल है। माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में की ना दुराचारी काल निरंजन दी ननकारी। माया समेत दिया भगाई सोलह शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वाणी कही थी कि इस दुर्गा के और काल निरंजन के संयोग से दुर्गा के गर्भ से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। तीन पुत्र इसने जन्मे और इनका ब्रह्मा और विष्णु शिव नाम धरा गया। तो उस समय कबीर जी को मूर्ख कहा करते, पागल है, झूठा है, कपटी है, इसलिए उन नकली गुरुओं का दाव लगा क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम सभी शिक्षित हो गए हैं, सदग्रंथ अपने पास हैं। अब ये अज्ञान की गुत्थी कति सुलझ जाएगी और ज्ञान प्रकाश हो जाएगा। तीन देव और अवतारा ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना में भक्ति में ये सब उलझे हुए हैं और जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा तुम पार कैसे होगे। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी पूजा के योग नहीं है ये कल स्पष्ट करेंगे श्रीमद् भगवत गीता से। बोलो सतगुरुदेव की। कर जोरू विनती करूं, डरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जांखें चोवा जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आग आधीन। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। कबीर चार खानी में भरमते कभू न लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनराए, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। ग्रीव सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करें जम तोड़ेंगे होठ। जय इब के सतगुरु मिले, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाहीं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर, भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक बड़े विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सुमर। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप से दर्शाया और बताया। उस परमेश्वर ने इस कलयुग के अंदर, कलयुग के प्रथम चरण में सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर एक लीला की, बालक रूप धारण किया। उसके बाद लीलामय तरीके से वो जनसाधारण की तरह बालकपन को प्राप्त हुए, युवा हुए और 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे। जब वो परमात्मा पृथ्वी पर आए, किसी मां से जन्म नहीं लिया, वे अपनी शक्ति से एक बालक रूप धारण करके बनारस काशी में लहर तारा नामक एक सरोवर पर कमल के फूल पर विराजमान हुए। उनको एक अष्टानंद नामक ऋषि ने देखा। उस ऋषि ने अपने गुरुदेव को बताया, श्री रामानंद जी को, कि एक ऊपर से आसमान से एक बहुत तेजों में प्रकाश आया, उस प्रकाश से मेरी आंखें चुंधिया गई, एकदम बंद हो गई, मैं देख नहीं सका। जब आंखें मेरी बंद हुई तो आंखों के अंदर एक बालक का रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, आंखें ज्यादा समय तक सूर्य को नहीं देख सकती, और जो ही हम सूर्य की से अपनी आंखों को हटाते हैं तो सूर्य का एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रकाश नहीं दिखता उसमें, उसका ओरिजिनल आकार दिखाई देता है, एक गोलाकार दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, आंखें जब बंद हुई तो उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया, उस बालक का प्रकाश था। एक नीरू और नीमा नामक दंपति निसंतान थे, वो प्रतिदिन उस सरोवर पर स्नानार्थ जाया करते थे। उस बालक परमेश्वर को वो दोनों ले आए थे और उनके घर पर परमात्मा ने लीला की थी। नीरू और नीमा जुलाहे का कार्य करते थे, इसलिए परमेश्वर धारणक रूप से प्रसिद्ध हुए, जुलाहा रूप से प्रसिद्ध हुए। उस परमेश्वर ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सभी सदग्रंथों का, पवित्र चारों वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का, पवित्र 18 पुराणों का यथार्थ ज्ञान अपने सिंपल लैंग्वेज में, अपनी साधारण भाषा में वर्णन किया। और जो आज आपके समक्ष सत्य सिद्ध हो रहा है, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी महिमा आप ही बताते हुए कहा था, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कहा था कि चारों पवित्र वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं, परंतु मैं वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि चारों पवित्र वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता जी है, और इन चारों वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन काल कह रहा कि मेरा एक ओम नाम है, उसका अंतिम श्वास तक जो जाप करता है वह मेरे वाली मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है, लेकिन भगवान प्राप्ति नहीं होती। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, जो इसका उच्चारण करता हुआ उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहन देहम सयाति परमाम गतिम। फिर उस पूर्ण परमात्मा की कबीर परमेश्वर के विषय में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का जो मंत्र है उसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत् सत ये तीन मंत्र का जाप पूर्ण परमात्मा की भक्ति का निर्देश है, ये उसी का उच्चारण उसका जाप कहा गया उसका श्रवण बताया है। इसमें ओम मंत्र ब्रह्म का है और तत् सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त मंत्र हैं। इसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा उस परम पिता के बारे में यथार्थ ज्ञान और भक्ति विधि। श्रीमद भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 29-30 तक भिन्न भिन्न प्रकार के साधकों का वर्णन किया है। कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई घोर तप करता है और सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। परंतु गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस पूर्ण यथार्थ भक्ति विधि तथा साथ में ये जो साधक साधना करते हैं ये साधनाएं ठीक हैं, शास्त्र अनुकूल हैं या शास्त्र विरुद्ध हैं, ये विस्तृत वर्णन सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखे हुए हैं, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से लिखे हुए। पवित्र गीत श्रीमद भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की गई वाणी में अर्थात परमेश्वर कबीर जी की वाणी में यथार्थ भक्ति मार्ग और साथ में जो साधना करते हैं वो गलत है या ठीक ये विस्तार से वर्णन दिया गया है। एक बार देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक 32, यह है श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 है ये। इसमें क्या कहा है कि एवं बहुविधा यगा विविधता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत से तरह के यज्ञ यानी पहले जो यज्ञ वर्णन किए हैं कि कोई ऐसा करता है कोई ऐसी साधना करता है, ये देखिएगा 25 से अध्याय नंबर 4 का श्लोक 25, अपने माने बहुत से वैसे दूसरे को या बहुत से योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी कुछ तो देवता पूजे बड़ी भांति अनुष्ठान करते हैं और दूसरे परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म अग्नि यानी ब्रह्मोग्नो यानी ब्रह्म के लिए अपने शरीर को गाड़ देते हैं, साधना में फूक देते हैं ब्रह्म अग्नि रूप में यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। देखो 26 में, और अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ संयम में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि समस्त इंद्रियों के को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग में हवन किया करते हैं। और कई अपरे माने कई कई पुरुष दर्व यज्ञ यानी केवल जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान हैं उनको दर्व संबंधी यज्ञ करने वाले कई पुरुष दर्व संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, कुछ तपस्या कर रहे हैं, कुछ धर्म से कित गौशाला बनवा दी, कित धर्मशाला, कित प्याव खुलवा दी, कित भंडारे करवा दिए, कहते इस तरह की साधनाएं करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं। और दूसरे योगीजन योग रूप या केवल योग ही करते रहते हैं, तथा दूसरे कितने ही योगी योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तो अहिंसा रूपी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे मुंह पट्टी बांध कर जैनी नंगे पैर मुंह पर पट्टी बांध के वो कहते हैं हम जीव हिंसा को ही जीव हिंसा नहीं करते, इस अहिंसावादी होकर ही परमात्मा प्राप्ति करेंगे, ये हमारी साधना है। अब 30 में कहा है, 29 और 30 में स्पष्ट किया है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को यानी श्वास उश्वास पान यानी प्राणायाम ही करते हैं और कुछ प्राण वायु में अपान वायु को अन्य नियमित आहार यानी कुछ अल्पहार करके ही सोचते हैं हम मोक्ष हो जाएंगे व्रत आदि करके। प्राणायाम प्राण पुरुष अर्थात कुछ प्राणायाम ही करते रहते हैं अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप को नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि कोई तो मुंह पर पट्टी बांध गए पैर तनंगे होकर और चलते फिरते हैं जीव हिंसा ना करके, हम जीव हिंसा नहीं करते इसलिए हमारी साधना पाप नाशक है मोक्षदायक है। कुछ घोर तपस्या करते हैं, कोई धार्मिक भंडारे यानी दर्व धन आदि का दान करके ही उसको मानते हैं कि हमारी साधना पाप नाशक और मोक्षदायक है। अब इसका निर्णय ये 30 तक आपने सुना, अब 32 में इसका निर्णय दिया है कि ये साधना जो ऐसे ऐसे व्यक्ति करते हैं साधक करते हैं तथा इसके अतिरिक्त और भी बहुत से विस्तार से उस परमेश्वर की वाणी में सच्चिदानंद घन परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, उनको सुनो। किससे सुनो? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा की परमेश्वर की वाणी में लिखा हुआ है उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। अब देखो 32 अध्याय 4 का श्लोक 32 एवं इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी लिख दी इन्होंने। ये ब्रह्मणे, ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा, इवन को ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया। मुखे माने वाणी, मुखे माने वाणी होगी क्योंकि मुख से उच्चारण किया हुआ जो ज्ञान परमेश्वर का, और ब्रह्मणे माने क्या है ये निष्कर्ष करते हैं, पहले निर्णय करते हैं इन्हीं के द्वारा। जहां पर इनकी बुद्धि स्लिप नहीं करती वहां तो ये ठीक अर्थ कर देते हैं, और जहां इनकी बुद्धि स्लिप कर जाती है इनको ज्ञान ही नहीं कि यहां किसके बारे में कहा गया है, ये सच्चिदानंद घन की वाणी कौन सी है ये देखो, तो वहां ये गलत कर जाते हैं। अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण है, इसका क्या अर्थ किया है इन्होंने? ओम तत् सत ऐसे यह तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परमेश्वर सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मणे का अर्थ सचिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है ये ब्रह्मणे। और यहां इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ कर दिया वेद, अरे तेरा गजब हो ब्रह्मण मान। यहां लिख दिया हम सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सचिदानंद घन कौन है? पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर। उस पूर्ण परमेश्वर की वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। देखिएगा अभी स्पष्ट हुआ कि ब्राह्मण माने वेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म, ये ब्रह्म का अर्थ वेद कर देते हैं ज्ञानता से। नहीं, ब्रह्म माने प्रभु, और ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, जैसे राजा का अर्थ संविधान नहीं हो सकता। वेद तो भगवान का विधान है, वेदों में तो वाणी है वो परमात्मा का विधान है। वेद जो है परमात्मा का संविधान समझो, और ब्रह्म परमात्मा का नाम है। तो ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता, कोई अनाड़ी कर सकता जिसको ज्ञान कति नहीं। यहां देखना अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, इस प्रकार जो पहले हुए भी उस तत्व ज्ञान में लिखे हैं, वो ठीक है या गलत है उनकी निर्णय दिया है। और बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी नहीं, सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और वो कर्म जान उनको, उनको उन सबको कर्म जान यानी कर्मों से, क्रियाओं से, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ परमेश्वर की महिमा का यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। इसमें स्पष्ट किया है कि परमेश्वर की वाणी में यथार्थ ज्ञान दिया है, और उसमें इन जो पहले आपको बताए हैं, कोई ऐसे साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई तपस्या करता है, कोई कुछ करता है, कोई केवल प्राणायाम पर आश्रित है, कोई अल्पाहारी बना हुआ है, ये सभी अपनी साधना को मोक्षदायक और पापनाशक जानकर करते हैं, लेकिन उनका विस्तार से विवरण उस परमेश्वर की वाणी में, उस परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहा है। अब वो परमेश्वर की वाणी वो कौन सी है अभी आपको दिखाते हैं, जिसका समर्थन चारों वेद भी करते हैं। परमात्मा की वाणी, परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलू वो वेद जानते नहीं। अब वेद परमात्मा कबीर जी का भेद है। अब जैसे आपको बताया कि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा दंपति उनको घर ले गया। 25 दिन तक परमेश्वर कबीर जी ने कोई आहार नहीं किया, और स्वस्थ ऐसे थे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। लेकिन माता पिता को चिंता हुई कि यह बालक मरेगा, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहा। नीरुनिमा पहले हिंदू थे, ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, फिर भी उनकी आस्था भगवान शिव से नहीं हटी थी, क्योंकि भगवान शिव के पुजारी थे। एक दिन भगवान शिव जी एक ब्राह्मण रूप, ऋषि रूप बना करके नीरुनिमा के घर पर पधारे, पहुंच गए और उनसे पूछा कि माई तू क्यों रो रही है। नीमा ने अपनी सारी कहानी बताई कि हमारे कोई संतान नहीं थी, और हमारे भगवान शिव जी ने मुझ पर कृपा की है, एक बच्चा मिला कमल के फूल पर, अब ये वो कुछ आहार नहीं कर रहा, ये बच्चा मरेगा और साथ में मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती। अब इस विषय को ज्यादा ना बढ़ाकर, क्योंकि हमारा आद उद्देश्य जो है कुछ और है, जो समझाने का ये एक भूमिका बना रहे हैं उस परमेश्वर को परमेश्वर सिद्ध करने के लिए। तो कबीर परमात्मा को बच्चे रूप से उठा करके नीमा ने एक ब्राह्मण रूप में विराजमान भगवान शिव जी को ऐसे थमाना चाहा, उसके चरणों में डालना चाहा, ऋषि जी के चरणों में डालना चाहा, तो ऐसे ही बच्चा ऋषि उस शिव जी के चरणों की तरफ उसने रखा, बच्चा वहां से हाथों से उठकर और 3 फुट की ऊंचाई पर अपने आप हवा में ऐसे स्थिर हो गई। और उस लीला को देखकर के भगवान शिव जी 3 कदम पीछे हो गए कि ये कोई परम शक्ति है जो मेरे चरणों में नहीं आ सका, कोई मेरे से परम शक्ति है। तब भगवान शिव जी ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को प्यार से लेते हैं, तो परमात्मा उनके हाथों में विराजमान हो गए। 7 बार वार्तालाप हुई। अब नीमा ये सब करिश्मा उस संत का ही मान रही थी जो सामने खड़ा था, कबीर जी का नहीं, क्योंकि उस ऋषि को वो शक्ति सारी समझ रही थी। कबीर परमेश्वर ने ब्राह्मण रूप में विराजमान शिव से कहा कि भगवान इनसे कहो कि कुंवारी गायें लावें, उसके ऊपर आप आशीर्वाद रूपी हाथ कमर पे लगा देना, वह दूध देवगी। ऐसा ही हुआ, एक कुंवारी गाय लाई गई। कबीर परमेश्वर के आदेश से भगवान शिव जी ने उसकी कमर पे हाथ मारा, थन लंबे लंबे हो गए, और एक कोरा पात्र ताजा घड़ा लाए थे मिट्टी का कुम्हार से, वो नीचे रख दिया। वो 3-4 किलो का जो पात्र था वो भर गया, अपने आप दूध बंद हो गया। फिर वो गाय प्रतिदिन दूध देने लगी और कबीर परमेश्वर उस कुंवारी गाय के दूध से लीला करते हुए परवृष को प्राप्त हुए। अब पुण्यात्माओं, ये प्रमाण आपको वेद में देता हूं। अब देखिएगा ऋग्वेद 9 से 10 मंडल, महर्षि दानव सरस्वती की इसमें फीत लगा रखी है, ये देखिएगा। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी मार्ग, दरियागंज। इसके मंडल नंबर 9, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। 9:1-9 में क्या लिखा है? अब अभी इमम अधन्या इत उत श्रणंती धेनुव शिशुम सोम इंद्राय पात्वे। इसका अर्थ इन्हीं के शब्दों में देखिए। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, और तेरा गजब, इन्होंने तो अड़ंगा करना तो मतलब था, गोबर करना था अनुवाद का, क्योंकि ज्ञान तो कहें का था को नहीं। अब यहां श्रद्धालु पुरुष कितना आ गया, तो भगवान की महिमा के वेद तो भगवान की महिमा गाते हैं। यहां इसका अर्थ ये बना है कि उस सोम माने अमर पुरुष को, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करता है कुमार अवस्था में ही, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसनीय, देनवे माने गौए, इसको अधन्या माने कुंवारी, इसका अर्थ है कुंवारी, अहिंसनीय यानी पूर्ण रूप से कुंवारी। अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कुंवारी, गौए माने गायें तृप्त करती हैं। ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को, श्रद्धालु पुरुष को कहें, उक्त भगवान को अहसिनिया वाणिया ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती है। कोई बात हो या परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा से, ये इनके अपना डंगा, इसका सीधा अर्थ बनता है इमम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, जो शिशु माने बालक रूप धारण करता है, शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय उसको अभी अधन्य यानी सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से, अधन्य माने कुंवारी, जो कभी भी सांड के द्वारा परेशान ना की गई हो, कभी भी अभिन्न, अभी अभी का अर्थ होता कभी भी पूर्ण रूप से, ऐसे नहीं यानी कुंवारी गायें, देनवे माने गौएं यानी गौओं, उसको तृप्त करती हैं। इसका सीधा साथ इन तड़ंगा करने का मतलब था, ज्ञान तो था एक ना। अब क्या अर्थ बनता है इसका कि पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है, बालक रूप में प्रकट होता है लीला करता हुआ, उस समय कुंवारी गायों से उसकी परवरिश, लीला की परवरिश होती है। पुण्यात्मा, इन वेदों को तो दास ने बहुत बाद में देखा है, पहले सौसम वेद में ऐसा ही लिखा है। और आज इन वो साधारण वाणी में ऐसा लिखा था परमेश्वर की वाणी में, आज इन वेदों ने उसका समर्थन कर दिया। अब बताते हैं कि कबीर परमेश्वर, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मण है मुखे सचिदानंद घन परमात्मा की वाणी में बहुत प्रकार के, ऊपर वाले जो पहले वर्णित है वो भी और अन्य भी सभी विस्तार से कहे गए हैं, और वो सभी कर्मजान यानी काम करते करते साधारण स्वाभाविक कर्मों को करते हुए पूर्ण होते हैं, वो परमात्मा द्वारा बताए गए वास्तविक धार्मिक अनुष्ठान। और परमात्मा की वाणी में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी वही वेद बताते हैं, वही परमात्मा का सौसम वेद व कबीर वाणी परमेश्वर की वाणी वही बताती है जो सिंपल लैंग्वेज में बहुत पहले लिखी गई थी, जिसको इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और गुरुओं ने और ब्राह्मणों ने रिजेक्ट कर दिया था कि वो क्या जाने कबीर, वो तंबूरे लेकर गाता था, वो अशिक्षित था, वो पढ़ा नहीं था, वो क्या जाने। तो लाल से अपरिचित होने से उन संतों ने और ऋषियों ने हमारे को कंकरों की गठड़ी बंधवा दी, हमारे को कौड़ियों की गठड़ी बंधवा दी, और उसको उठाए फिर रहे हैं कि ये बहुत कीमती है। आन उपासना रूपी कौड़ी, देवी देवताओं की पूजा रूपी कौड़ी, ब्रह्म परब्रह्म तक की साधना रूपी कौड़ी, उनको हम उठाए फिर रहे थे। अब हमें लाल की परख हो गई है, जिसको लाल मिल जाएगा फिर वो कौड़ियों को नहीं ग्रहण कर सकता। अब आपको दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर के विषय में वेद क्या बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96, सूक्त नंबर 96 यानी 96 और मंत्र नंबर 16 से 20 में। अब देखिएगा, ये वही ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96, इसमें मंत्र नंबर 16, सब स्वायुध है, सब आयुध है, सब आयुध माने शस्त्र, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र, स्रोत्र भी पुय माने अर्से गुह है चारु नाम। ये क्या बताते हैं, हे परमात्मन, इन्हीं के शब्दों में पढ़िए जो अनुवादकर्ताओं ने क्या किया है। हे परमात्मन, सरोपरि रहस्य चारु यानी श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ है कि परमात्मा आपका जो सबसे श्रेष्ठ नाम, नाम जो तुम्हारी संज्ञा नहीं, नाम माने संज्ञा नहीं, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराएं। गुप्त गुहम माने गुप्त, गुहम का अर्थ होता है कति गुप्त, ये रहस्य रहस्य युक्त, आपका जो गुप्त और वास्तविक जो मंत्र नाम है और मंत्र और इसका नाम का दो अभिप्राय बन जाते हैं, एक तो उनका वास्तविक नाम प्रभु का क्या है और साथ में वो क्या मंत्र उपदेश आप देते हो उसका ज्ञान कराएं। तो इसमें क्या है कि हे परमात्मन, आप अपना श्रेष्ठ नाम जो गुप्त श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराएं। अब स्वायुद्ध माने स्वाभाविक शक्ति से युक्त, अब इसका अर्थ ये बनता है, ये देखिएगा, अब सत्रमा ये 16वां श्लोक आपने देखा, सत्रमा देखें, सत्रमे में लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीन मरुतो गणेन। यह कबीर गिरभी, कबीर ये ऊपर रह लग गया है, कबीर गिरभी, गिरभी कबीर गिरभी माने कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी से कावेना, और ये कबीर संत सोम, संत कबीर संत सोम है, पवित्रम अत्यंती रेभन। अब देखो सिसुम, अब इसको ये दास बताएगा, इन्होंने क्या किया है कि सिसुम का अर्थ क्या है, सैती सूक्ष्म क्रोति प्रलय काले जगदीस्ती जगदीति सिसुम, शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को, देखो शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को यहां लिखना था, वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा प्रकट होता है, और उसकी कुंवारी गाय जिसका, क्योंकि नौवें अध्याय के नौवें मंडल के और प्रथम नौवें सूक्त के मंडल के प्रथम सूक्त में और नौवें मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तब कुंवारी गाय से उसकी परवरिश होती है। अब उसी का प्रकरण चल रहा है नौवें मंडल में छठवें मास सूक्त है, इसमें यह कहा कि जो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट होता है बालक रूप में, मनुष्य के बच्चे के रूप में, तो उस समय वो कबीर वाणी के द्वारा वो कबीर परमात्मा होता है, और कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा कविताओं लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को ऊंचे स्वर में उच्चारण करता है। अब स्पष्ट लिखा है देखो इन्हीं के शब्दों में कि यहां लिखना शिशु, उस शिशु रूप परमात्मा को जो सदा प्रगट है जगानम, जो अत्यंत कमनीय है, उसकी उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं, और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब देखो कबीर गिरभी, अब क्या लिखा है कबीर गिरभी, इसका संधि छेद कर दिया उन्होंने कबीर गिरभी, इसको कबीर को ऐसे लिख दिया अपसर्ग ला दिए, कबीर गिरभी द्वारा, ये लिखा कवि लोग वाणी द्वारा, इसका लिखना था कि कबीर वाणी द्वारा कवितव से कावेन कवितव से लोकोक्तियों के माध्यम से सोमम मन सोम रूप यानी अमर परमात्मा, पवित्रम पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में रेभन सन गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब इन्होंने ज्ञान तो कहेगा था कोनी। अब देखो फिर आगे अठारवे में ऋषि मना ये ऋषिकृत सवरसा सहसर अणिथा अणिथ पदवी कविनाम तृतीय धामम महिष्य शिष्य संत सोमय विराजमानो राजती स्तूप। स्तूप माने गुम्बज होता है, स्तूप माने गुम्बज, उस गुम्बज में विराजमान रहता है, तेजो में शरीर विक्त विराजमान है वो परमात्मा, तीसरे धाम में रहता है। अच्छा इसका यथार्थ अनुवाद ये दास करके आपको दिखाएगा, ये तो आपको संकेत दिया है कि ये वेदों में वाणी ये है, संस्कृत में ये मंत्र ये लिखे हैं, इनका अनुवाद लगभग ऐसा है, इसका यथार्थ अनुवाद कैसा है ये आपको इस दास द्वारा किया हुआ मिलेगा। ये आपको भक्ति सौदागर को संदेश भाग एक और दो में भी मिलेगा, और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में तथा परमेश्वर के सार संदेश में ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये देखिएगा ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके प्रश्न नंबर 426 वे अनुवाद किए हैं, चार पांच श्लोकों का। पूर्ण परमात्मा अपने वास्तविक ज्ञान को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 18 यहां लिखा है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में कहा कि पूर्ण परमात्मा, ये इसका देखिए, सब आयुध है स्तोत्र भी पुयमानो अर्षभे गुयम चारु नाम अभिवाजम सप्तरीव सवर श्यामी वायु भी गा देव सोम। हे परमेश्वर आप सब आयुध है अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं, उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पूय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें, तथा सतोत्र भी अपने उपासक को अपने गुप्त चारु सुखदाई श्रेष्ठ नाम माने नाम व मंत्र का ज्ञान कराएं, अपने वास्तविक नाम व मंत्र का ज्ञान कराएं। सोमदेव परमेश्वर आपके तत्व ज्ञान की गा माने लोकोक्ति गान की सर्वश्यामी कानों को अति प्रिय लगने वाली विश्रुति प्राण तथा जीवन दायनी शुद्ध देसी घी जैसी और घोड़े जैसी तीव्रगामी तथा बलशाली, और अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है, उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। अब देखना, अब सत्रमे का में क्या लिखा है, शिशु जगानम हरियतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुत गणेन कबीर गिरभी, कबीर गिरभी कावेना कबीर संसोम पवित्रम अत्यंत रेभन। सर्व सृष्टि रचनहार हरे शिशु सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जगानम जान बूझ कर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को तम माने उसमें मर्जंती निर्मलता के साथ शोभंती उच्चारण करता है। वहीन प्रभु प्राप्ति की लगी विरह की अग्नि वाले मृत माने भक्त गणेन माने समूह के लिए कावेना कविताओं द्वारा कविताओं से पवित्रम अति एति अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर गिरभी कबीर गिरभी, इसको हमने कबीर गिरभी को ऐसे लिख दिया, रह के नीचे हलंत लगा दी कबीर गिरभी, क्योंकि इसके ऊपर छोटा रह लगा रखा है, ये कबीर गिरभी ये छोटा रह लगा है ऊपर भी छोटा कबीर गिरभी, तो हमने कबीर को ऐसे लिख दिया और गिरभी कबीर वाणी, कबीर माने कबीर और गिरभी माने वाणी, कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता है कबीर संत सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है, उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। इसका क्या स्पष्ट शब्द ये अर्थ ये होता है कि वह कबीर परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो जानबूझकर प्रकट होता है क्योंकि विशेष उद्देश्य के लिए आता है, तो उस समय वो अपने यथार्थ ज्ञान को उस कबीर वाणी को ऊंची स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से यानी दोहों के माध्यम से वर्णन करता है, ऊंचे स्वर में बोलता है। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हे लरे हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा स्वयं ही कहते हैं कि हम आकर आवाज लगाते हैं ऊंचे स्वर में गा गा कर सुनाते हैं, चारों युग में हम मेरे संत भी आते हैं और मैं भी आता हूं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हेल माने ऊंची आवाज में कूक आवाज लगा लगा कर कहा कि हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तत्व ज्ञान रूपी पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति रूपी हीरे और मोती हम बरसा रहे हैं, लेकिन इनको ना पहचान के रिजेक्ट करके डाल देते हैं और डड़े उठा उठा कर कंकरों को उठाकर अपने घर में रखे हुए हैं और जानते हैं कि हम बहुत धन इकट्ठा कर लिया भक्ति का, ये व्यर्थ है। और यही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊंचे स्वर में अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को ऊंचे स्वर में कबीर वाणी के द्वारा कविताओं से लोकोक्तियों के माध्यम से यानी कविताओं से एक कवि की तरह बोल बोल के सुनाता है, लेकिन वो परमात्मा वो संत परमात्मा ही होता है, वो संत रूप में प्रगट, संत कहो ऋषि कहो ब्राह्मण कहो गुरु कहो, यानी यदि इनकी सही यथार्थ परिभाषा जाने तो ऋषि और संत और गुरु और ब्राह्मण वो होता जो यथार्थ ज्ञान से परिचित है, बाकी ये नकली भी उसी उपमा से सुशोभित है, उसी उपाधि से सुशोभित है। अब क्या बताया है कि वो संत रूप में प्रगट परमात्मा अमर पुरुष होता है, वो पूर्ण परमात्मा होता है जो ऐसी वाणी बोलता है। आगे लिखा है 18वें मंत्र में कि उस ऋषि कृत उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट, क्योंकि परमात्मा चार युग में आते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर तक संतों को ऋषि कहा जाता था और कलयुग में अब इन्हें संत कहने लगे, तो दोनों ही तरह की वाणी इस वेद में लिखी है कि उस ऋषि कृत यानी उस संत द्वारा उच्चारण की हुई या बनाई हुई उसके द्वारा रचना की हुई वाणी उसके अनुयायियों के द्वार के लिए एक अमृत के समान मीठी स्वादिष्ट होती है, उनको इतनी प्यारी लगती है, और पूरा उसके अनुयायियों का समूह उस वाणी से बहुत ही अच्छा प्रभावित होता है, सुख अनुभव करता है। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 18, ऋषि मना ये ऋषि कृत सर्वसा सहसर अणिथ है पदवी कविनाम तृतीय धाम महिष सीसा संत सोम विराजमान राजती सटूप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी माने उपाधि को प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उससे ऋषिकृत संत रूप में प्रकट हुए उस प्रभु द्वारा रची सहस्रणीथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवरसा स्वर्ग के तुल आनंददायक होती है। सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तृतीय तीसरे धाम माने मुक्तिलोक अर्थात सतलोक की महिष सुदृढ़ पृथ्वी को शिष्य माने स्थापित करके अनुमान पश्चात संत मानव सदृश संत रूप में सटूप माने गुम्बद अर्थात गुम्बद में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमानु राजती उज्जवल सथूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। अब ये क्या कहते हैं, इस दास का किया अनुवाद हमारे बच्चों का तो गले उतरे ही उतरेगा, लेकिन अन्य समाज को ये नकली गले ना उतरने देते। ये नो कहे रामपाल तो हिंदी जानता ना संस्कृत जानता, ये क्या अनुवाद करेगा वेदों का, अर्थम न कर रख्या अनुवाद ये गोबर कर रख्या। अब मैं ना हिंदी जानता ना अंग्रेजी जानता और अनुवाद कर रख्या, और कमाल की बात यह है तुम इसमें त्रुटि निकाल के दिखा दो विद्वानों, आओ ना बराबर में आंख जब खोलेंगी। अब भगत समाज कोई बावला नहीं बालक नहीं, सब समझते हैं क्योंकि उन्होंने तो मुश्किल माचरी है अखथारी पोल पाटगी, अब तुम्हें टूक नहीं जनता तुम्हें धक्का रहेगी हर नकलियो इतना धोखा करा करें, इन बोलने जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ये रोला मचा दे फिर हो मार दिए हो मार लुट गए पिट गए, वो गंदा है लुटेरा है झूठा है। अब बकवाद करने के काम चलेगा मैदान में आना पड़ेगा मेरे बराबर में जब बेरा पटेगा इनको। अब देखना यही वो ऋग्वेद मंडल नंबर 9। अब आपको मंत्र नंबर 18 दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा अनुवादित देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र ये 18। ऋषि मना ये ऋषिकृत सवरसा सहसरणीथ पदवी कविनाम तृतीय धाम धामम महिष शिष्य संत सोमो सोम विराजमानु राजती स्टूप। अब देखना अनुवाद है यानी के द्वारा किया हुआ, सोम रूप परमात्मा आए है अमर परमात्मा शिशासन पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीय धामम देवान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम विराजमान विराजमान अब जो ज्ञान योगी अड़ाद्यन अड़ंगा विराजमान ज्ञान योगी का, अरे ज्ञान योगी का केवल भगवान की महिमा गाई जा रही है, विराजमान परमात्मा है उसको प्रकाश करने वाला है। अनुराजती का अर्थ है अनुकार, ये अलग इन्होंने उल्टा कर दिया, ये देखो इन्होंने अनु यहां लिया विराजमानु विराजमान विराजमानु राजती, इसने इन्होंने के कर लिया यो अन यहां ले आए, ये देखो अब इनका इन्होंने क्या किया है कि जैसे सोम परमात्मा सोम यानी अमर परमा हम जो अनुवाद दास करेगा वो सुनना इनके द्वारा आपने पढ़ लिया, इसका अर्थ बनता अमर परमात्मा, इसका अर्थ कुछ और ही बनता है वो आपको अभी दिखाऊंगा। इनके पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीय धामम अब देवान प्रतरण दोनों से प्रति जो तीसरे जो मुक्ति धाम में विराजमान है, बस इतना होना चाहिए। अनुराजती यानी वो पूर्ण रूप से प्रकाशित है। अनुमाने पश्चात में उसमें बैठ के और वहां वो तेजोमय शरीर युक्त है। अब सीधा सार विराजमान विराजम विराजमान है, बस यही खत्म होना चाहिए। वो विराजमान है, वह सतल अमर परमात्मा महिषे माने सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी, महिषे माने पृथ्वी अर्थ होता है, और वो तीसरा धाम बना करके उसको स्थापित करके उसमें विराजमान होता है। तो इनकी ही दृष्टिकोण से वो परमात्मा जो है तीसरे मुक्ति धाम में विराजम विराजमान जो ज्ञान योगी है, यानी कोई ज्ञान योगी उस तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। अरे महिमा भगवान की गान दाग रहे हैं, और ये योगी बना दिया उसका, योगी कोई शब्द नहीं इसके अंदर। परमात्मा की महिमा गाई जा रही है, परमात्मा के विषय में जानकारी दी जा रही है, परमात्मा पर ही सारा कुछ ये केंद्रित होना चाहिए, ना कि कोई और अन्य विषय में।